श्लोक संख्या 57। यः सर्वत्र अनिविस्त्रेह तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति नाद्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अनुवाद शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोर्श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। तो श्लोक संख्या 2.56 56वां श्लोक। क्या प्रश्न था और क्या उत्तर था? कौन सा प्रश्न था और उस प्रश्न के क्या उत्तर थे? क्या बोलते हैं? प्रश्न यह था कि जो स्थित प्रज्ञ होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो समाधिस्थ होते हैं, वो कैसे बोलते हैं? उनका बोलने का तरीका क्या होता है? कैसे बातचीत करते हैं? तो कैसे बातचीत करते हैं, इस प्रश्न के उप प्रश्न क्या है? वो क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं और कैसे बोलते हैं? क्या बोलते हैं, क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं? यह अर्जुन का वास्तव में प्रश्न था। नहीं, प्रश्न मत भूलिए, तो उत्तर पता ही नहीं चलेगा किसका है। तो यह प्रश्न था, उसका उत्तर भगवान देना शुरू किए हैं। वो उत्तर दिया है उन्होंने 57, 56 और 57, 58 श्लोक में। तो जो 56 में उत्तर दिए हैं उसकी चर्चा हुई थी, उसमें दुख शुरुआत कैसे हुई है श्लोक की? दुखेश्वनु उद्विग्न मनः सुखेशु विगत स्पृह वितराग भय क्रोध स्थित धी मुनिरुच्यते। अर्थात जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता है अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता है और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है वह स्थिर मन वाला है। यह हमने पिछले शुक्रवार को इसकी चर्चा की है ना। तो इसमें जो उपदेश है, मुख्य उपदेश, वह दुखेश अनुद्विग्न मनः, अर्थात जिसका मन दुखों से उद्विग्न नहीं होता है। तो इसकी क्या चर्चा हुई है, कुछ याद है? बताइए। तो शरीर का दुख, शरीर से उत्पन्न होने वाला, मन से उत्पन्न होने वाला और दिमाग से, बुद्धि से उत्पन्न होने वाले दुख, इनकी चर्चा हुई थी। परंतु भक्त क्या करते हैं, इस दुख को दुख क्यों नहीं मानते? वो दुख तो है, मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं। तो इस प्रकार से सब चर्चा हुई थी। इसी के उत्तर को आगे बढ़ाते हुए वितराग भय क्रोध ये सब हुआ है, यदि आप रिफ्रेश कर सकते हैं तो कीजिए, अन्यथा आगे बढ़ते हैं। कुछ स्मरण है तो बोलिए। तीन प्रकार के दुख होते हैं, उदाहरण किसका था? जयानंद प्रभु का क्या उदाहरण था? हाँ, बाद में ट्रीटमेंट दो। हाँ, और वो क्या बोले, उनका महत्व का वाक्य है, अभी मुझे क्या लग रहा है? वो कह रहे थे कि अभी तक पूरे जीवन में जो कृष्ण भावनामृत का अभी तक के सारे अनुभव में से अभी का जो अनुभव है अति दिव्य है, अभी मुझे बहुत दिव्य अनुभव हो रहा है। क्योंकि वो क्या मानते थे, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। प्रभुपाद जी का उदाहरण हमने देखा बड़ा विस्तार से, और उसके आगे क्या हुआ? हरिदास ठाकुर क्या करते थे? 3 लाख, फिर भी कैसा करते थे? तब तक क्या नहीं करते थे? तब तक तब तक नहीं लेते थे। हमने भी कम से कम 16 माला का शपथ लेना चाहिए, संकल्प करना चाहिए कि 16 माला जब तक नहीं होगी प्रसाद नहीं लेंगे, भोजन नहीं करेंगे, है कि नहीं? हरिदास ठाकुर 3 लाख होने तक उनका, इवन भगवान स्वयं कह कि अभी आप बूढ़े हो गए हैं, शरीर जर्जर हो गया, अभी आपको इतनी आवश्यकता नहीं, आप प्रसाद ले लो। बोले नहीं, शरीर का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं तो शरीर हुई नहीं, तो मुझे जब से कंसर्न है शरीर से कोई कंसर्न। ऐसे हमने उदाहरण देखे थे। और फिर फटाफट बोलिए, फास्ट सभी बोलिए, माता जी बोलिए अभी, इसके बाद क्या हुआ? फ्लैशबैक। कृष्णा कॉन्शियस व्यक्ति, हाँ, इसीलिए तो नहीं होता है ना, क्यों नहीं होता है भाई? वो तो बाकी लोगों का भी होता है। मुख्य बात क्या है, वो बात कभी भूलना नहीं है। हमने कौन सी बातें नहीं भूलने के लिए बोली थी? हाँ वो, और जब माला करने से पहले 1 माला इसकी करना चाहिए, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। और एक बात कौन सी उसके साथ, और एक बात बोली थी, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। हाँ हाँ, ये जो सारा संसार है अस्थिर है। हम कितना भी, कितने भी बार, लाखों बार हमने ये सुना होगा कि संसार अस्थिर है, कितनी बार सुना होगा, ये करोड़ों बार सुना होगा, बचपन से लेके अभी तक सुन ही रहे हैं। लेकिन जब उसको मानने की बात आती है तो बोलते हैं उसके ऊपर ही सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं, है? सबसे ज्यादा विश्वास हमारा किस पे है? संसार पे ही है। और सुने लाखों बार कि संसार अस्थिर है, और सबसे ज्यादा विश्वास किस पे है? अरे कैसी बात है ये, हा? इसका अर्थ है या तो हम संसार अस्थिर है इस बात को समझे नहीं, और यदि समझे हैं तो हम वो मानना नहीं जानते हैं, जानते हैं लेकिन मानना नहीं चाहते। इसलिए उसका भी एक बार जप करना आवश्यक है।
एक माला जप में ये तीन बातें बहुत आवश्यक है ना,
ये तीन बातें बहुत आवश्यक है। कौन सी कौन सी? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। पांच बातें हो गई, मतलब ये जो पांच बातें हैं जप करने के पहले एकदम पक्का विश्वास से उसका स्मरण चिंतन करना चाहिए। अब एक माला जप मत कीजिए इसका, लेकिन कम से कम पांच मिनट दस मिनट तो भी बैठ के सोचिए। पांच बात, ये पांच बातें दस मिनट तक बोलिए। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये संसार चलायमान है, अस्थिर है, नो गारंटी वाला है, हाँ है कि नहीं? और ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा नेवर, कृष्ण को नित्य स्मरण कीजिए, कृष्ण को कभी भी मत भूलिए। ये पांच बातें बड़े गंभीरता से सीरियसली करना है। तो इस प्रकार से फिर आगे क्या हुआ? पांच मिनट में सब बताइए फटाफट, नेक्स्ट श्लोक होना चाहिए। हाँ, बंगाली बाबू क्या बोले? प्रभुपाद जी को भगाए, भगाओ, भागा, भगाने के लिए आए प्रभुपाद जी को। इंडिया में भी हमको तंग करते, यहाँ पे भी नहीं छोड़ते, इधर भी आ गए, हरे कृष्णा करते, जाओ यहाँ से निकलो। तो क्या हुआ फिर? उनका स्वागत किए। कैसे वो पूछे और कहे कि अभी मैं जा रहा हूँ, आपने बोला था जाओ तो मैं जा रहा हूँ है ना। और कुछ भी याद नहीं रहता है। आप लोग नोट्स लिखते फिर भी याद नहीं रहता है नोट्स में से देख के बोलिए, नो प्रॉब्लम। क्रोध के विषय में कुछ बोलिए, बहुत महत्व की बात है क्रोध। क्रोध, क्रोध को नियंत्रित, क्रोध आता है, ऐसा तो नहीं क्रोध नहीं आता है, क्रोध आता है, लेकिन जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं? हाँ, और बुद्धिमान जो व्यक्ति है, जो भक्त है, वो बड़े बड़े गंभीरता से, बड़े शांति से क्रोध को नियंत्रित करता है। और मूर्ख व्यक्ति जो होता है, बड़े जोर जोर से अपने क्रोध को प्रकट करता है, बोलता है मेरा स्वभाव ही ऐसा है, हम बड़ी प्रशंसा चाहता है उस बात से, पर वो मूर्ख है। चाणक्य पंडित क्या कहते हैं? क्रोध अर्थात पागलपन, क्रोध अर्थात कुछ क्षण का पागलपन, क्षणिक पागलपन। कुछ क्षण के लिए लोग व्यक्ति मैड हो जाता है, पागल हो जाता है। कोई क्रोधित हो गया तो यही समझना चाहिए, थोड़ी देर के लिए मैड हो गया है, तो मैड व्यक्ति से बात करते हैं। ऐसा होता है जो व्यक्ति क्रोध प्रकट करते हैं उसके सामने वाला व्यक्ति और उसके साथ डिबेट करता है, आर्ग्यूमेंट करता है। कोई पागल व्यक्ति के साथ आर्ग्यूमेंट करेगा? तो क्रोधित व्यक्ति के साथ क्यों आर्ग्यूमेंट करते हैं? क्योंकि हमें भी अपना ईगो रहता है, इसलिए हम क्रोध, जो क्रोधी व्यक्ति है उसके साथ आर्ग्यूमेंट करते हैं। होना ये चाहिए कि कोई क्रोधित व्यक्ति क्रोध कर रहा है ये तो पागल है, जाने तो पागल के कौन मुंह लगेगा, ये सोच के उसके साथ आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि आर्ग्यूमेंट करने से उसका क्रोध और बढ़ता है और उसका क्रोध बढ़ने के कारण हमारा भी क्रोध बढ़ता है तो क्रोध तो पागलपन है, हमको पागल नहीं होना चाहिए। चाणक्य पंडित कहते हैं क्षणिक पागलपन। और औरंगजेब नहीं मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद पैगंबर जो पैगंबर है, इस्लाम धर्म के मुख्य है, प्रणेते है, वो क्या कहते हैं? जन्नत में जाना है तो गुस्से में काबू, जन्नत में वही जा सकता है जो गुस्से को काबू में कर सकता है। वो भी उनके भी धर्म में ऐसा लिखा है, कुरान में भी ये कहते हैं, मोहम्मद पैगंबर कहते हैं। और बताइए, आसक्ति नहीं रखते, हाँ वो एग्जाम्पल बताइए, कौन बताता है दो मिनट में? चंद्र दिखता ही नहीं, पेड़ ही अच्छा है बोलते हाँ तो ऐसा ही, ये संसार ही अच्छा है बोलते, भगवान का क्या करेंगे है ना? हाँ भाई बताइए। हाँ पीछे पूछ, उसी में उसको भय रहता है, कोई मेरे आगे होना ही नहीं चाहिए, भयभीत है सब लोग। और शरीर से ही भय उत्पन्न होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यही सबसे बड़ा भय है। देखो उसके भय, वो भय से कोई चिंतित नहीं है, जो भय है उससे भयभीत नहीं है, और जो भय नहीं है उससे भयभीत है। तो इसको क्या कहते हैं? भ्रम। ये सबसे बड़ा भ्रम है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इस श्लोक में सर्वप्रथम श्लोक संख्या 57 2.57, यह सर्वत्रान भिस्नेह, यह सर्वत्र अनभिस्नेह, घनिष्ठ संबंध के लिए लालाहित नहीं रहता है। जो व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है, जो व्यक्ति जिस स्थान पर रहता है उसे उस स्थान के प्रति आसक्ति या लगाव हो जाता है कि नहीं? जो व्यक्ति जिस जगह पर रहता है, जिस स्थान पे रहता है, उस स्थान के प्रति उस व्यक्ति को लगाव हो जाता है, आसक्ति हो जाती है, चाहे कैसा भी वो स्थान रहे, ठीक है नहीं? एक कुत्ता गटर में रहता है, गंदगी में रहता है, परंतु दूसरा कुत्ता यदि वहां पे आ जाए तो क्या करता है वो? क्योंकि उसको उस गंदगी से आसक्ति हुई है। मनुष्य का लगभग ऐसा ही है यदि वो भक्त नहीं है तो। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि यदि भक्ति नहीं है, भगवान के विषय में जानने की आतुरता नहीं है, तत्परता नहीं है, तो व्यक्ति कुत्ते के जैसा है, जानवर के जैसा उसका जीवन है, क्योंकि वो हर वस्तु से, हर विषय से, हर जगह से, हर स्थान से आसक्त हो जाता। वास्तविक आसक्ति क्या है उसको समझ में नहीं आती है, और जिसको जैसे कि भय है, जिससे भयभीत होना चाहिए उससे भयभीत नहीं है, जिससे भयभीत है वो तो भय है ही नहीं। उसी प्रकार से जिस वस्तु से आसक्त नहीं होना चाहिए, उस वक्त वस्तु से, विषय से या व्यक्ति से बहुत ज्यादा आसक्त है, और जिससे आसक्त होना चाहिए उसके विषय में पता ही नहीं है, पता करना भी नहीं चाहते, तो इसलिए यह भ्रम है। यहां पे यह कहे, इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है, ना अशुभ के प्राप्त होने पर उसे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर है, ऐसा कहा जाता है। परंतु सर्वत्र अनिभिन्न स्नेह, स्नेह स्नेह अर्थात घनिष्ठ संबंध, वो व्यक्ति किसी भी वस्तु से, विषय से या किसी भी स्थान से घनिष्ठ संबंध नहीं बनाता, अर्थात यदि वो स्थान उससे छीना गया तो उसको कोई दुख नहीं होगा, वो घनिष्ठ संबंध नहीं बनाता है। और क्योंकि ये जो आसक्ति है किसी स्थान की, किसी जगह की, किसी व्यक्ति विशेष की या किसी वस्तु की जो आसक्ति है वो क्यों है? वो आसक्ति इसलिए है क्योंकि मैं शरीर हूं यही समझता हूं, सब कुछ जो है वो शरीर ही है और शरीर को आराम चाहिए, इस शरीर को अर्थात इंद्रियों की तृप्त करने के लिए, इंद्रियों को तृप्त करने के लिए जो व्यक्ति आसक्त रहता है वही व्यक्ति किसी भी स्थान के प्रति, विषय के प्रति या व्यक्ति के प्रति कभी भी आसक्त हो सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा है हमारे आध्यात्मिक जीवन में, कभी भी कोई भी किसी भी समय कोई भी स्थान से, कोई भी विषय से और कोई भी व्यक्ति से आसक्त हो सकता है। ये आध्यात्मिक जीवन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस बात से हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। आसक्त यदि हम नहीं हैं उच्च तत्व से तो ये धोखा हमारे जीवन में नित्य है। बड़े बड़े आसक्त हो गए, बड़े बड़े विद्वान, ज्ञानी, तपस्वी, हजारों वर्ष की तपस्या की, सैकड़ों वर्ष की तपस्या की, भगवान की सेवा की, भक्तों की सेवा की, परंतु अचानक एक दिन आसक्त हो गए। ये हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। और इसलिए भगवान ये बहुत बहुत ही जोर से जोर लगा के कह रहे हैं कि वो लोग आसक्त नहीं होते हैं। कौन से लोग? जो लोग पूर्ण ज्ञान में स्थिर है और भक्त होते हैं, कृष्ण भावना भावित होते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी 100% आसक्त हो चुके होते हैं। उनमें कोई आसक्ति ही नहीं बची है। अब क्या आसक्त होगी किससे? बहुत डेंजर, बहुत बड़ा खतरा है। कोई भी निर्जीव वस्तु से भी व्यक्ति आसक्त हो सकता है, सजीवों की तो बात ही बहुत दूर है। सजीव व्यक्ति से भी आसक्त हो सकता है। इसलिए इस श्लोक में सर्वप्रथम ये कह रहे कि वो घनिष्ठ संबंध के लिए लालायित नहीं रहता है। क्यों? क्योंकि वो ये मानता है मैं आत्मा हूं और मुझे उसको तुष्ट संतुष्ट करना है, मुझे शरीर को संतुष्ट नहीं करना है, शरीर को केवल मेंटेन करना है। शरीर का उपयोग हमको लाना है क्योंकि हमको चंद्र को देखना है। चंद्र को देखने के लिए हमको इन सारे वस्तुओं का उपयोग करना है। शरीर को हमको अच्छे से यूज में लाना है, उसका सही उपयोग हमको करना है शरीर का। इसलिए वो ये जानते हैं भक्त लोग, और वो पूर्ण ज्ञान में रहते हैं। उनको ये धोखा कभी नहीं होता है कि वो कब किससे आसक्त हो जाए, ये इसका धोखा उनको कभी नहीं रहता है। तो श्रील प्रभुपाद जी के बारे में यदि हम सोचे थोड़ी देर के लिए, श्रील प्रभुपाद जी कभी भी किसी भी वस्तु विशेष से आसक्त नहीं हुए। 12 वर्ष में 14 बार पूरे पृथ्वी को भ्रमण किए, बड़े बड़े बहुत ही सुंदर सुंदर मंदिरों का निर्माण किया। कभी प्रभुपाद जी ऐसे नहीं बोले कि कितना सुंदर मंदिर का निर्माण हो गया, इसके बाजू में मेरे लिए एक बहुत भव्य इमारत खड़ी कर दो, ये बहुत सुंदर मंदिर है, इसके बाजू में कहीं मेरे लिए बहुत सुंदर महल बना दो। नहीं, बहुत सुंदर बढ़िया मंदिर का निर्माण किया। विदेशों में देखेंगे आप तो आज की स्थिति में अमेरिका जैसे देश में वो प्रभुपाद जी के मार्गदर्शन में जो मंदिर बने हुए हैं आज वो टूरिस्ट प्लेस है, अर्थात सारे विश्व के लोग वहां आते हैं तो उसको देखने के लिए जाते हैं, इतना आकर्षित करने वाले मंदिर। लेकिन प्रभुपाद ने निर्माण किया और वहां से निकल गए, कोई आसक्ति नहीं स्थान की, उस जगह की, उस स्थान की, उस अमेरिका की या जापान की या किसी भी, कोई आसक्ति नहीं। किसी भी प्रकार से इतने विद्वान है, इतने भक्त है, इतने सब प्रकार है, कभी किसी दूसरे प्रकार की स्त्री के प्रति कोई आसक्ति नहीं, किसी के भी प्रति कोई आसक्ति नहीं। इतना ही नहीं, अपने शरीर के भी प्रति कोई आसक्ति नहीं प्रभुपाद जी की। हाँ जी, यहां जो कह रहे हैं भगवान, इसका एक्सपेरिमेंट, इसका एग्जाम्पल, बहुत सुंदर उदाहरण स्वयं प्रभुपाद जी है और अपनी परंपरा में उन्होंने यही सिखाया है। अपने आने वाले सारे शिष्यों को उन्होंने यही ज्ञान दिया है और उसी के आधार पर इतना बड़ा संप्रदाय, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ, सारे संसार में प्रगति कर रहा है, भगवान कृष्ण के उपदेशों का प्रचार और प्रसार कर रहा है। क्योंकि एक शुद्ध भक्त
एक शुद्ध भक्त ने इसका निर्माण किया है, जो अनासक्त थे। कई ऐसे सुंदर सुंदर मंदिर है जिसमें प्रभुपाद जी ने केवल एक ही बार विजिट दिया है, केवल एक ही बार उस जगह पे गए हैं, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड साइड में देखे तो उन देशों में प्रभुपाद जी केवल एक या दो बार ही गए हैं। परंतु कभी वो कोई ऐसी इच्छा नहीं, अंतिम वो सोच जब अंतिम समय में क्या कहे प्रभुपाद जी, मुझे वृंदावन जाना है। और प्रभुपाद जी को वृंदावन लाया गया। कितना उनका विरक्ति किसी भी स्थान के लिए, किसी भी जगह के लिए, कोई आसक्ति नहीं। जैसे भगवान राम, कोई अयोध्या के प्रति उनको आसक्ति नहीं थी। एक समय ऐसा था, एक क्षण ऐसा था कि महाराज दशरथ ने बोल दिया है कि अभी कल भगवान राम का राज्याभिषेक होगा। पूरी पूरे अयोध्या में प्रसन्न वातावरण था, सारे अयोध्या वासी बड़े प्रफुल्लित थे, आनंद के माहौल में थे, आनंद उत्साह थे, उत्साह में थे। दूसरा दिन सूर्योदय हुआ, सारी कार्यकलाप शुरू हुए, भगवान राम का स्नान हुआ, बहुत ही उल्लास का वातावरण था। वो तैयार हो गए, अब उनके मस्तक पे मुकुट ही रखना था राजा का। कुछ ही मिनट बाकी थे, उनको तुरंत संदेश मिल गया। पिताश्री ने बुलाया, पिताश्री के पास गए, महाराज दशरथ के पास गए देखने के लिए उनको, और उनको बताया गया भगवान राम को कि अभी आपको राज्याभिषेक नहीं है, अभी आपको 14 साल के लिए वन में जाना है। अभी राज्याभिषेक नहीं, अभी वन में जाइए आप 14 साल, 14 वर्ष वन में जाइए। भगवान राम के चेहरे पे जरा भी दुख नहीं था, जरा भी इरिटेशन, जरा भी क्रोध, उद्विग्नता, आवेग कुछ भी नहीं था। जो आनंद उनके चेहरे पे था, राज्याभिषेक होने का जो आनंद था, उनको बताया जा रहा था कि अभी राज्याभिषेक होगा, उस समय उनका चेहरा जो प्रफुल्लित था, जो आनंद था, उसी प्रकार का आनंद उनके चेहरे पे था जब उनको यह न्यूज, यह संदेश दिया गया कि अब आपको वन में जाना है। कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे क्यों हुआ? यदि हम होते उस जगत, सबसे पहले तो क्या होता? क्रोध आता। सबसे पहले क्रोध आता किस पे? अपने पिताजी पे, महाराज दशरथ पे। हम आजकल के कई युवाओं को देखते हैं, अपने पिताजी को बोलते तुमने क्या किया हमारे लिए। क्या किया तुमने हमारे लिए, क्रोध से बोलते हैं। भगवान राम देखिए, कोई फर्क नहीं चेहरे पे। ये है अनासक्ति। भगवान नर लीला कर रहे, दिखा रहे पुरुष ने कैसे रहना चाहिए, पुरुष का किस प्रकार से स्वभाव होना चाहिए, व्यक्ति का कैसे स्वभाव होना चाहिए, कैसे नियंत्रण करना चाहिए, कैसे अनासक्त रहना चाहिए, है ना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परंतु अनासक्त तो, आसक्ति तो नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसके प्रति आसक्ति होनी चाहिए? तो भगवान और भक्त, जो शुद्ध भक्त है और जो भगवान है, भगवान के प्रति आसक्त होना चाहिए। शरीर के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, शारीरिक स्तर पे जो संबंध है वो सारे संबंधों के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। क्या कारण है, क्यों नहीं होना चाहिए? कभी भी कोई भी धोखा दे सकता है। किसी भी क्षण कोई भी व्यक्ति, कोई भी विषय, कोई भी परिस्थिति धोखा दे सकता है, परंतु भगवान जो है, भगवान धोखा नहीं देते हैं। तो जो स्थिर बुद्धि वाला होता है वो आसक्त तो होता है, लेकिन वो आसक्त किससे होता है? वो भगवान से आसक्त होता है। वो अपने आत्मा को समझता है, और आत्मा के स्तर पे होने के कारण वो भगवान और शुद्ध भक्तों से स्नेह करता है, आसक्त तो होता है। क्योंकि आसक्त तो होगा व्यक्ति, पर किससे आसक्त होना चाहिए, ये महत्व की बात है। तो भगवान से आसक्त, जब हम भगवान से आसक्त हो गए, शुद्ध भक्तों से आसक्त हो गए, तो हमारी हरिनाम में रुचि होगी। यदि हमारी हरिनाम में रुचि नहीं है, 16 माला जप करते वक्त या एक माला जप करते वक्त यदि हमारा मन चंचल होता है, या जप करने के पहले ऐसे क्यों जप करे, कल करेंगे, अभी छोड़ो, रोज तो करते हैं। जप में यदि हमारी उदासीनता होती है तो समझना चाहिए कि हम संसार के प्रति ज्यादा आसक्त है, भगवान के प्रति बिल्कुल आसक्त नहीं। ये मापदंड है, अपने आप को मेजर कर सकते हैं। क्या मैं जप करने के लिए लालायित हूं? क्या जप करने की मेरी प्रवृत्ति है? प्रवृत्ति ही नहीं है जप करने की। जप करने के लिए मन में स्फूर्ति यदि होती नहीं है, और फलाना ढिकाना चर्चा करते बैठते, फलाने ने ये कहा, वो साधु ये कहा, ये साधु वो कहा, वो ठप ठीक है। जप के विषय में बोलिए, जप में यदि रुचि है तो समझना चाहिए कि हमारी भगवान की ओर आसक्ति बढ़ रही है, और यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि हमारे जीवन में हमको कभी भी बहुत बड़ा धोखा हो सकता है, क्योंकि सारी प्रकृति कैसे है, अस्थिर है, और हम उससे ज्यादा आसक्त हैं। नाम में रुचि नहीं है, इसका अर्थ यह कि हम प्रकृति से बहुत ज्यादा आसक्त है, और वो चंचल है, चलायमान है, माया देवी है, साक्षात कभी भी बदल जाती है, और हम उससे आसक्त है, तो इसका रिजल्ट तो क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा बहुत बड़ा धोखा। 440 वोल्ट का वो रहता है ना पिक्चर, उसको नित्य देखना चाहिए, घर में एक जगह वो भी लगा देना चाहिए। क्या है, हम घर में बहुत जगह पे भगवान के पिक्चर लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, लेकिन सीरियसली नहीं लेते हैं उसको, क्योंकि यहां थोड़ी ना वो कुछ डेंजर है। डेंजर जो धोखा जो खतरा है ना, उस खतरे को हम भूल जाते हैं, इसलिए भगवान के प्रति गंभीर नहीं रहते हैं, भगवान के फोटो के प्रति गंभीर नहीं रहते, फोटो ही तो है बोलते हैं, परंतु वो जो पिक्चर लगाएंगे 440 का घर में, भगवान के नीचे साइड में, नीचे के साइड में वो पिक्चर लगा दीजिए, यदि ये नहीं है तो ये, क्योंकि नहीं तो भूलने की आदत है हमको, धोखा भूल जाते हैं, ये धोखा याद रखना चाहिए, सुबह उठते से ही वो दिखना चाहिए। व्यक्ति को यदि भय होता है ना, तो भय से क्यों ना भक्ति करना शुरू करे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। भगवान के प्रति और भक्त, शुद्ध भक्तों के प्रति आसक्ति। प्रभुपाद महाराज के जो शिष्य हैं, प्रभुपाद जी के शिष्य, प्रभुपाद जी के प्रति बहुत आसक्त थे, बहुत आसक्त। प्रभुपाद जी का विरह वो सहन नहीं कर पाते थे, रोते थे लिटरली। प्रभुपाद कहते कि अभी मैं भारत जाके आता हूं, तो रोते थे लिटरली। भक्त के प्रति आसक्ति, शुद्ध भक्त के प्रति इतनी आसक्ति, और हमारा तो ऐसा है, मिले तो ठीक है हरे कृष्णा, नहीं तो है ही अपने काम में लगे हुए। ये जो आसक्ति है, भक्त के प्रति आसक्ति नहीं है, भगवान के प्रति आसक्ति नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी के जो शिष्य है, वो इतने उनकी शरीर की, उनके पूरी सेवा करते थे, अत्यंत आसक्त थे, और उनके शरीर की सेवा अत्यंत समर्पित भाव से करते थे। शरीर की सेवा, प्रभुपाद जी ओल्ड थे, प्रभुपाद जी का उम्र क्या था, उनसे उनके शरीर से कार्य नहीं होता था, पूरा ध्यान रखते थे उनके शरीर का, उनको कोई तकलीफ ना हो। प्रभुपाद अपने शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे, अपने शरीर के प्रति वो बिल्कुल आसक्त नहीं थे, लेकिन उनके शिष्य उनके शरीर के प्रति आसक्त थे, क्योंकि वो शुद्ध भक्त है, उनका शरीर दिव्य है, मटेरियल शरीर नहीं रहता है, उनके शरीर में कंपन होते रहते थे हरे कृष्ण नाम के, ऐसा दिव्य शरीर होता। तो शिष्यगण उनके शरीर के प्रति आसक्त थे, लेकिन प्रभुपाद स्वयं के शरीर के प्रति बिल्कुल आसक्त नहीं थे। ये भक्ति है, ये वास्तविक आसक्ति है। तो इस प्रकार से इसको दिव्य आसक्ति कहते हैं, ये भौतिक आसक्ति नहीं है। ये बात नित्य ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी जब प्रभुपाद जी ने विदेशों में अमेरिका में हरे कृष्ण आंदोलन का प्रचार प्रसार शुरू किया, तो अनेकों युवकों ने, वहां के यंग जनरेशन, अनेकों युवकों ने कभी कृष्ण सुना भी नहीं था, कृष्ण क्या है कौन है पता भी नहीं था। उन्होंने सारे युवकों ने अपना घरदार छोड़ के प्रभुपाद जी के साथ रहने लगे, अपना घर छोड़ के प्रभुपाद जी के साथ रहने लगे। कई बार ऐसा होता था पुलिस आते थे, पुलिस में कंप्लेंट कर देते, पुलिस आके उन लोगों को पकड़ के ले जाती थी, चलो तुम्हारे घर पे जाओ, कंप्लेंट है, तुम इधर नहीं रह सकते, जाओ तुम्हारे माता पिता। वो कुछ समय तक घर पे रहते थे और फिर वापिस भाग के आ जाते थे प्रभुपाद जी के पास, फिर प्रभुपाद जी के साथ रहने लगते थे। लेकिन क्योंकि वो प्रभुपाद जी के भक्ति के ओर, प्रभुपाद जी की जो कृष्ण भक्ति थी, वो प्रभुपाद जी के कृष्ण भक्ति के ओर इतने आसक्त थे कि वो प्रभुपाद जी के साथ ही रहना चाहते। ये दिव्य आसक्ति है, ये भौतिक आसक्ति नहीं है। हम इतने स्तर पे आसक्त नहीं होंगे, हो सकता है कि हम घर बार छोड़ के वहां नहीं जाएंगे, प्रभुपाद जी ने कहा भी नहीं ऐसे। प्रभुपाद जी ये नहीं कहे कि सारे घर छोड़ के इधर मंदिर को घर बनाओ, प्रभुपाद जी ने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि मंदिर को घर बनाओ, प्रभुपाद जी ने यह कहा है कि घर को मंदिर बनाओ, है ना। घर को मंदिर बनाओ इसका अर्थ क्या है, घर में होम थिएटर लाओ नहीं, घर का थिएटर बना दो नहीं, घर का मंदिर बनाओ। घर का यदि मंदिर बनेगा तो हमारे आसपास में जो भी कोई रहते हैं, जो भी लोग रहते हैं, उनको भी उसका लाभ होगा, वो वाइब्रेशंस, वो कंपन उनके मस्तिष्क तक पहुंच जाएंगे। ये वो प्रचार, ये प्रभुपाद जी का उपदेश है, आदेश है, घर को मंदिर बनाओ, भगवान की सेवा घर में करो, मंदिर में हफ्ते में एक बार जाओ, दो बार जाओ, एकादशी के दिन जाओ, रविवार को जाओ, काउंसिलिंग मीटिंग में जाओ, पर बाकी चार दिन घर में मंदिर, घर को मंदिर को बनाओ, घर को मंदिर बनाओ, तो तब जाके भगवान, तब जाके हम आसक्त हो गए, अदरवाइज हम आसक्त भक्ति से नहीं हो सकते हैं। अब वैसे भगवान राम के प्रति भी जिस प्रकार से प्रभुपाद जी के प्रति भक्त आसक्त थे, अब ये तो भक्त के प्रति भक्तों की आसक्ति, भगवान के प्रति भी भक्तों की आसक्ति है। हम देखते गोप गोपियों की भगवान कृष्ण के साथ कैसे आसक्ति थी। फिर भगवान श्री राम के प्रति अयोध्या वासियों की आसक्ति देखिए, 14 वर्ष के लिए भगवान को वनवास हुआ, जब इस बात में कोई संदेश को जब उन्होंने सुना अयोध्या वासियों, उस दिन सभी पूरी अयोध्या में, मान लो पूरे भारत में एक भी व्यक्ति के घर पे चूल्हा नहीं जला, पूरे भारत में समझ लो पूरे अयोध्या में एक भी व्यक्ति ने उस दिन भोजन नहीं किया। सोचिए, कोई भी गाय ने अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाया, ना वो बछड़ा दूध पिया पूरी अयोध्या में। जब इस न्यूज को सुना गया तो ये जो होती है भगवान के प्रति जो आसक्ति होती है, या भक्तों के प्रति जो आसक्ति होती है, वो आसक्ति कैसे आती है, कैसे वो आसक्ति हमारे अंदर विकसित हो सकती है, किस क्यों क्या क्या करे तो वो आसक्ति हम में भी आ जाए, क्या करना होगा। जो लोग भगवान के प्रति आसक्त है उनका संग करना होगा, अर्थात सत्संग करना होगा, शुद्ध भक्तों का संग करना होगा, तब जाके हमारे अंदर आसक्ति आएगी। अर्थात
भक्तगण भौतिक संसार से आसक्त नहीं होते हैं, परंतु वो आध्यात्मिक जगत से आसक्त रहते हैं। आसक्ति दोनों में रहती है, भक्त और अभक्त। भक्त में भौतिक संसार के प्रति आसक्ति रहती है, सॉरी अभक्त में, और भक्त में आध्यात्मिक जगत के प्रति आसक्ति रहती है। ये अंतर है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। उसके पश्चात लिखा है तत् प्राप्य शुभाशुभम, अर्थात उन शुभ और अशुभ को प्राप्त करके, अर्थात शुभ या अशुभ के प्रति भी उनको, शुभ होए तो ज्यादा उत्साहित उल्लासित नहीं होते हैं और अशुभ हुआ तो ज्यादा दुखी नहीं होते हैं। तत् प्राप्य शुभाशुभम, यह भौतिक जगत, ये जो संसार है भौतिक संसार, शुभ और अशुभ, ये द्वंद्व, ये दो चीजों से बना हुआ है। कौन सी दो चीजों से? अच्छा बुरा, शुभ और अशुभ, ये दो ही चीजों से ये संसार बना हुआ है। और ये दोनों चीजें, कोई भी एक चीज इसमें की अकेली नहीं रहती, कोई भी एक चीज अकेले नहीं रहती। शुभ हुआ कि कुछ क्षण बाद अशुभ होता है, सुख है तो कुछ समय के पश्चात दुख आएगा, दुख है तो कुछ समय के पश्चात सुख, चलते रहता है। क्योंकि कोई एक वस्तु यहाँ पे नहीं मिलती है। ये शुभ और अशुभ का द्वंद्व है। शुभ का अर्थ होता है जो मन को प्रिय है, और अशुभ का अर्थ होता है जो मन को अप्रिय है। है कि नहीं? जो मन को अच्छा लगता है तो हम बोलते हैं शुभ है, जो मन को अच्छा नहीं लगता है तो हम बोलते हैं वो अशुभ है। लेकिन एक बात समझना चाहिए, जब कुछ भी शुभ होता है उसी समय कुछ अशुभ होते रहता है। जब भी कुछ भी शुभ होता, मान लो किसी का मृत्यु हो गया तो उसी घर में उसी वंश में किसी का जन्म हो जाता है, है ना? उसी कुल में कहीं पे किसी का जन्म होता है। या अब देखते हैं कितना शुभ और कितना अशुभ होता है इसके विषय में। इसलिए भक्तगण या स्थिर बुद्धि वाले विचलित नहीं होते हैं, क्योंकि शुभ अशुभ, अशुभ तो मन का खेल है। और वो ये बात, ये भी बात जानते हैं कि ये सारा संसार द्वंद्व से भरा पड़ा हुआ है, बड़ा द्वंद्व है इस संसार में। देखिए कभी कभी सुनते कोई आतंकवादियों ने ट्रेन पे हमला कर दिया, आतंकवादियों ने बस पे हमला कर दिया, मर गए सैकड़ों लोग, मर गए, द्वंद्व, कितना दुख है, दुख है, अशुभ है। किसी व्यक्ति को लाखों करोड़ों रुपए की लॉटरी लग गई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, दुख है। शुभ और अशुभ नित्य है। युधिष्ठिर महाराज कुछ समय पहले राजा थे, कुछ समय पहले राजा थे, अचानक क्या हो गया, वनवास। कुछ समय, अरे अभी अभी तो राजा थे, अच्छा सुख था, अब अचानक शुभ था सब कुछ, एकदम अशुभ हो गया। माता सीता अभी तक, अभी अभी बहुत अच्छा अयोध्या का राज्य का महारानी थी, बहुत शुभ था, अचानक वनवासी बन गई, अशुभ हो गया। नहीं, शुभ और अशुभ ये कभी भी किसी को नहीं छोड़ सकता है। और इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात, इसकी विशेष बात यह है कि अचानक हो जाता है। हाँ, कभी नोटिस मिलती है दो चार दिन पहले? नहीं मिलती है, अचानक हो जाता है। है कि नहीं डेंजर? अचानक एक जगह शुभ होता है, वही अचानक दूसरी जगह पे क्या हो जाता है? अशुभ होता है। एक जगह वो कोई बात बहुत शुभ है तो वही बात दूसरे के लिए, एक व्यक्ति के लिए शुभ है जो बात दूसरे के लिए
विचित्र बात है नहीं। मान लो कोई बहुत बड़ी बीमारी फैल गई, डेंगू या नहीं क्या फैला था, स्वाइन फ्लू, सारा सारे शहर, बड़े बड़े शहर परेशान, नाक को बांध बांध के घूम रहे, दुख अशुभ, कितना कष्ट, कितना भय, डर, दुख, अशुभ, परेशान। हर व्यक्ति डॉक्टर के पास गया, हमको चेकअप कर लो भाई, कभी हमको हो जाएगा, आयुर्वेदिक दुकान वाले का सब। समाज के लिए ये बहुत बड़ा अशुभ था, लेकिन डॉक्टरों के लिए एक बात एक व्यक्ति के लिए अशुभ हो सकती है, दूसरे व्यक्ति के लिए वही बात वही स्थिति में शुभ होती है, है? बड़ी विचित्रता है। और ये सब क्या होता है, अचानक हो जाता है, अचानक। कोई व्यक्ति अभी अभी देखा, बहुत अच्छा था यार, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, बहुत हाई क्लास, हाईएस्ट प्लेटफॉर्म पे थे, बड़े ये थे वो थे अभी सुना क्या हुआ, अचानक। इस शब्द से हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, अचानक अचानक ये हुआ कि सारी भक्ति छूट गई, बहुत बड़ा खतरा जीवन में। अब भयभीत करने वाली स्थिति हो गई, क्योंकि जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसेंगे। अच्छा नहीं लगा इसलिए भक्ति नहीं, या किसी के प्रति आसक्ति बढ़ गई, भौतिक संसार के प्रति, भौतिकता के प्रति, माया के प्रति भक्ति छूट गई। अरे अरे अचानक हुआ, एक बार पहली बार अचानक होता है, फिर धीरे धीरे व्यक्ति फंसते जाता है और फिर पता ही नहीं चलता है, अपना ट्रैप खुद ही बांधता है अचानक। तो इस प्रकार से शुभ और अशुभ इन बातों से जो वास्तव में शुद्ध भक्त होते हैं जैसे प्रभुपाद जी, उनके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है फर्क, क्योंकि ये मन से उत्पन्न हुई बातें हैं और शरीर के भोग के लिए है। तो ये जो शुद्ध भक्त होते हैं वो तो यही मानते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब कुछ शुभ या अच्छा होता है तो बहुत से लोग प्रशंसा करते हैं, यह बहुत बड़ी अज्ञानता है। किसी व्यक्ति के विषय में कोई सुख उसको प्राप्त हो गया, या कुछ उसके जीवन में शुभ हो गया, बहुत शुभ हो गया, तो क्या होता है, लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, क्या बुद्धि है बहुत बुद्धिमान है, बहुत ऐश्वर्यशाली है, बहुत धन प्राप्त किया, बड़ा बुद्धिमान है, सारा संसार उसकी क्या करता है, प्रशंसा करता है, क्योंकि वो शुभ के प्रति आसक्त हो गया, ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हो गया। इसलिए चतुर्थ स्कंद में, चौथे स्कंद में श्रीमद् भागवतम के वर्णन आता है, बहुत सुंदर वर्णन है। पृथु महाराज की कथा आपने सुनी होगी, पृथु महाराज का राज्याभिषेक होने लगा, महाराज पृथु का राज्याभिषेक होने लगा, उनका जब अभिषेक हो रहा था, राज्याभिषेक होना था, उस समय सारे संसार के सब आ गए, चंद्र सूर्य नदी पर्वत देवी देवता सब आ गए, और उनको अनेकों प्रकार के गिफ्ट प्रदान किए, अनेकों प्रकार के उनको भेंट वस्तु दिए, और फिर जो वहां पे सूत और मगध जो होते हैं वो प्रशंसा करते हैं, उस समय सूत और मगध मागधी जो लोग होते हैं वो प्रशंसक, राजा का अभिषेक होने के बाद राजा की प्रशंसा करते हैं। तो ये दोनों राजा की प्रशंसा करने लगे बधाई देने के लिए, लेकिन महाराज पृथु क्या कहते हैं, महाराज पृथु कहते हैं कि हे भद्र, हे सूत, हे मागध, हे भद्र सूत, हे मागध तथा अन्य सभी भक्तों, सुनो ये प्रार्थना क्यों कर रहे हो, मेरी प्रार्थना सुनो, ये सब आप क्यों बोल रहे हो, ये प्रशंसा क्यों कर रहे हो। वो कहते हैं, आपने मुझ में जिन गुणों का बखान किया है मेरे लिए,
मेरे लिए जिन गुणों का आपने बखान या वर्णन किया है या जो प्रशंसा की है वे तो अभी मुझ में प्रकट ही नहीं हुए। अरे मैंने तो अभी राज्याभिषेक की लिया है, अभी तो मैं राजा हूं, और आप जो गुणों का वर्णन कर रहे हो, जो मेरी प्रशंसा कर रहे हो, वो तो अभी मेरे में प्रकट ही नहीं हुए, अर्थात मैंने अभी वो करके ही नहीं दिखाया कुछ। तो आप प्रशंसा क्यों कर रहे हो, क्यों प्रशंसा कर रहे हो? जो तीसरी बात इस श्लोक में है, क्या है? ना अभिनंदति न द्वेष्टि, वो ना तो किसी का अभिनंदन करते हैं, ना किसी का द्वेष करते हैं, ना किसी का अभिनंदन स्वीकार करते हैं। ऋतु महाराज कहते हैं जो अभी तक मैंने नहीं किया उसके विषय में, जो अभी तक मेरे में प्रकट ही नहीं हुआ, मैंने जिसके प्रति कोई कार्यकलाप ही नहीं किया, उसके विषय में आप मेरी प्रशंसा क्यों कर रहे हो? कोई भक्त होता है, कोई उच्च स्तर का व्यक्ति होता है, कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है, और वो यदि इस तरह से बात करता है, कौन सी बात? जो है ही नहीं वास्तव में, जो है नहीं उसकी यदि वो व्यक्ति चर्चा करता है तो वो धोखा देता है अपने को भी और दूसरों को भी। हाँ, है कि नहीं? देखिए पृथ्वी महाराज कितनी बड़ी, वो अभिनंदन का स्वीकार नहीं कर रहे ना। देखिए तीसरी बात क्या है श्लोक में, पढ़िए, ना अभिनंदति न द्वेष्टि, पढ़ा ना? वो अभिनंदन का स्वीकार करते, ना किसी का द्वेष करते, ना किसी का अभिनंदन करते। पृथ्वी महाराज चतुर्थ स्कंद में इस बात को बताते हैं, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाइए। तो इस प्रकार से हमको यह बात समझनी है कि अभिनंदन और द्वेष, या भगवान कहते हैं वो भक्त होते हैं जो अभिनंदन से भी प्रभावित नहीं होते और द्वेष से डिस्टर्ब नहीं होते, मन में द्वेष नहीं रखते। द्वेष किसका करते हैं, कैसी घटना का? यदि हमारे साथ कभी कुछ अशुभ हो जाता है, मान लो किसी व्यक्ति ने मुझे दो चार भरे बुरे शब्द कह दिए, अच्छा मुझे ऐसा कहा, उसके प्रति मन में द्वेष उत्पन्न हो जाएगा। अशुभ घटना के प्रति मनुष्य के मन में द्वेष उत्पन्न होता है, अशुभ घटना के प्रति। लेकिन यहां भगवान कहते हैं वो कृष्ण भावना भावित जो भक्त होते हैं अशुभ घटना को वो स्वीकार करते हैं, स्वीकार कर लेते। पृथ्वी महाराज ने अश्वमेघ, 100 अश्वमेघ यज्ञ कर किए थे, कितने? लेकिन 100 अश्वमेघ यज्ञ उनका हुआ नहीं, 99 यज्ञ अश्वमेघ यज्ञ उन्होंने किए। और जब वो 100 यज्ञ करने जाते थे, हर समय इंद्र आके उसकी उनके घोड़े को चुरा लेता था। और कैसे आता था? कभी सन्यासी का रूप लेके आता था, कभी बहुत बड़ा हाथ में कमंडलू जटा वगैरह बढ़ा के आ जाता था, कभी ब्राह्मण का रूप लेके आ जाता था, कैसे भी इस प्रकार से अनेक प्रकार के रूप लेके, पलट पलट के लेके रूप लेके आके वो घोड़े को अश्व को चुरा लेता था। और यदि उनका 100वां अश्वमेघ होता तो सारा इंद्र का पद धोखे में आ जाता, इसलिए इंद्र को थोड़ा बहुत अपने पद की चिंता थी। परंतु जब अनेक प्रयत्नों के पश्चात जब 100वां यज्ञ हुआ ही नहीं, तो अंत में जो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं वो सोचे हमारे यजमान इतने बड़े हैं महाराज पृथु, और इतनी बार इन्होंने प्रयास किया यज्ञ करने का, परंतु फिर भी ये इंद्र आके जैसे तैसे इस यज्ञ को ध्वस्त कर देता है, बाधा लाता है यज्ञ में। अब यदि वो आ गया किसी भी रूप में, हम संकल्प करते हैं हाथ में जल लेके, जैसे ही वो आएगा भस्म हो जाएगा। वो ब्राह्मणों ने संकल्प किया, परंतु ब्रह्मदेव को उधर चिंता पड़ गई कि ऐसे हो गया तो सारा सृष्टि कैसे चलेगा, सब लोगों को अपना अपना काम भगवान ने दिया है और ब्रह्मदेव जनरल मैनेजर है, सबका सही काम कर रहे कि नहीं वो देखते हैं, कभी गड़बड़ हो गई तो इंटरफियर करते हैं, ये कैसे होगा? तो ब्रह्मदेव ने उन ब्राह्मणों को समझाया, और पृथु महाराज को जब इस बात का पता चला तो पृथु महाराज बोले कोई बात नहीं, मुझे ये यज्ञ ही नहीं करना है, कोई बात नहीं, ठीक है। वो चाहे तो यज्ञ कर सकते थे, इंद्र के साथ युद्ध कर सकते थे और सभी से अपनी प्रशंसा के पात्र हो सकते थे, परंतु उन्होंने वैसा न करते करके उन्होंने क्या किया, यज्ञ ठीक है मैं यज्ञ नहीं करता। इंद्र के प्रति कोई द्वेष भाव नहीं रखा, कोई द्वेष भाव नहीं, चाहे तो वो रख सकते थे, कुछ द्वेष भाव नहीं। बलि महाराज सारी संपत्ति सारा धन भगवान ने लूट लिया उनसे, लेकिन भगवान के प्रति उनको 1% भी मन में द्वेष नहीं है। कोई भी कारण से हमारे जीवन में यदि कुछ ऐसा हुआ और हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो गया तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, हम इतनी माला जप करता था क्या हुआ और बलि महाराज क्या कहे, बलि महाराज का पूरा साम्राज्य सब कुछ लिया, इतना ही नहीं उनको खुद को स्वयं बलि महाराज को भी ले लिया, हरण कर लिया उनका सर पे पैर रख के, लेकिन इतना होने पर भी वो आनंदित थे, वाह भगवान आपकी बड़ी महिमा अगाध है, जरा भी भगवान के प्रति द्वेष नहीं। ये बलि महाराज की कथा से हमको ये समझना चाहिए, जरा भी कुछ नुकसान हुआ, जरा भी शारीरिक वेदनाएं बढ़ गई, तुरंत क्या करे, इतना सब कुछ करते हैं लेकिन उदास हो जाते हैं, ऐसे होता है ना, बहुत बार होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। परीक्षित महाराज ने क्या किया, शमिक ऋषि के गले में सर्प डाल दिया मरा हुआ, और जब उनका पुत्र श्रृंगी, उसने महाराज को, परीक्षित महाराज को श्राप दिया। परीक्षित महाराज इतने बड़े धर्मात्मा थे, इतने तपस्वी साधु, सोचिए जिन्होंने गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया हो, कथा सुनी हो भगवान के मुख से, वो क्या साधारण व्यक्ति होगा। वो प्रतिशाप दे सकते थे श्रृंगी को, छोटे से बालक को, तुरंत फिर जल लेके हाथ में वो श्रृंगी को भी श्राप दे सकते थे द्वेष के कारण, लेकिन क्या उन्होंने द्वेष किया, क्या उन्होंने श्राप दिया, 7 दिन बाद उनका मृत्यु था फिर भी उन्होंने द्वेष नहीं किया। हाँ, तो कहने का अर्थ यह है कि भगवान यहां जो कह रहे हैं कि क्या शब्द है, नाभिनंदति न द्वेष्टि, ना वो प्रशंसा से लालाहित, प्रशंसा के लिए लालाहित रहते हैं, ना प्रशंसा से प्रभावित होते हैं, और ना ही वो किसी का द्वेष करते हैं, किसी का द्वेष नहीं कर सकते करते हैं। प्रभुपाद महाराज को इतना प्रताड़ित करते थे दूसरे संप्रदाय के लोग, अनेक संप्रदाय के लोग अनेकों बातें कहते थे। एक बार एक पत्रकार परिषद हो रही थी, प्रभुपाद जी व्यासासन पे बैठे थे और पत्रकार लोग आके कुछ कुछ पूछ रहे, सभा चल रही थी उसके बाद पत्रकार कुछ पूछ रहे थे, पहले प्रवचन फिर पत्रकार लोग, अनेकों प्रकार के अनेकों संप्रदाय के लोग अनेकों विचित्र संप्रदाय विचित्र प्रश्न उनको पूछ रहे थे। उतने में एक व्यक्ति को उन्होंने देखा, वो जिसकी उसके हाथ में छोटी सी माला थी ग्रीन कलर की हरे रंग की, वो गृहस्थ मुस्लिम थे, प्रभुपाद जी का दूर से उनके ऊपर ध्यान गया। प्रभुपाद जी ने उनको बुलाया, आओ पास में, क्या कर रहे हो, बोले जप कर रहे हैं, बोले हम हमारे भगवान अल्लाह का नाम ले रहे हैं। प्रभुपाद जी बोले तुरंत मेरे पास आके बैठो आसन लो। उन्होंने ये नहीं बोला जाओ भागो यहां, प्रभुपाद जी ने एक भक्त को एक बार विदेश में भेजा, विदेश में अर्थात मुस्लिम देशों में, उन्होंने उनको कहा कि जाओ देखो कि वहां किस प्रकार से प्रचार किया जा सकता है,
किस प्रकार से प्रचार किया जा सकता है, जाओ देखो, देख के आओ, एनालाइज, थोड़ा सा परिस्थिति देख के आओ और फिर मुझे बताओ। वो भक्त आए घूम-घाम के सब मुस्लिम देश, और प्रभुपाद जी को कहे, बोले महाराज प्रभुपाद जी बहुत डिफिकल्ट है उधर प्रचार प्रसार करना। क्यों? जहां तहां कदम कदम पे, 10 कदम चलो तो मस्जिद, 10 कदम चलो तो मस्जिद, प्रार्थना का जो ठिकान होता है प्रार्थना स्थल, इतने ऐसे परिस्थिति में क्या हम प्रचार प्रसार करेंगे? प्रभुपाद जी तुरंत क्या कहे, यदि तुम मस्जिदों में भगवान कृष्ण को नहीं देख सकते हो तो तुम देश करते हो, तुम भक्ति या तुम प्रचार प्रसार नहीं कर सकते। सोचिए, यदि तुम वह उस प्रार्थना स्थली में भगवान को नहीं देखते हो, कृष्ण को नहीं देखते हो, तो तुम प्रचार प्रसार नहीं कर सकते हो कहीं पे भी। अर्थात द्वेष भाव क्यों आता है? क्योंकि जिस व्यक्ति के प्रति हम द्वेष करते हैं, जिस विषय के प्रति, किसके भी, जिस व्यक्ति के प्रति विशेषकर हम द्वेष करते हैं, उसमें हम कृष्ण को नहीं देखते हैं। नहीं है कि नहीं, आपको क्या लगता है? उसमें हम उसके शरीर को देखते हैं, केवल आत्मा कृष्ण के रूप को, कृष्ण के अंश को नहीं देखते, इसलिए हमारा द्वेष और ज्यादा 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 बढ़ता है। द्वेष करने की स्थिति उत्पन्न ही नहीं होनी देनी चाहिए, उधर से निकल जाना चाहिए। ऐसी स्थिति यदि उत्पन्न होती है तो ऐसे हम देखते कि प्रभुपाद महाराज भी क्या है, न द्वेष्टि है, द्वेष्टा नहीं है। और चौथी बात कहे भगवान, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। अर्थात जिस व्यक्ति की वाणी में उपर्युक्त 3 प्रकार की विशेषताएं हो सकती है, उसकी बुद्धि स्थिर होती है। अब कौन सी 3 विशेषताएं? अभी हमने जो चर्चा की है, भौतिक संसार के प्रति अनासक्ति। जब भौतिक संसार, देखिए ध्यान से सुनिए, प्रश्न क्या है, वो क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? भगवान के विषय में बोलते हैं। कैसे बोलते हैं उसकी भी चर्चा हुई है, पर भगवान के विषय में बोल सकते हैं। क्यों वो भगवान के विषय में बोल सकते हैं? इसलिए वो बोल सकते हैं कि वो संसार के प्रति अनासक्त रहते हैं, ज्यादा उनकी भौतिक संसार के प्रति आसक्ति नहीं रहती है, इसलिए भौतिक संसार के विषय में वो ज्यादा बोलते नहीं है। जब वो आसक्त ही नहीं, कोई व्यक्ति किसी से यदि आसक्त है तो दिन भर उसी की बात करेगा, है कि नहीं? दिन भर उसी की बात करेगा। परंतु ये जो व्यक्ति है, ये भौतिक संसार से आसक्त ही नहीं होता है, इसलिए ये आसक्त होता है भगवान से। और जो व्यक्ति जिससे आसक्त होता है उसकी बात करेगा। प्रश्न ये है कि वो क्या बोलता है, तो भगवान के विषय में बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि वो भगवान के प्रति आसक्त बोलता है, आसक्त होने की वजह से वो बोल सकता है। संसार के प्रति आसक्त नहीं है, इसलिए उसके वाणी में भगवान का उपदेश होता है। प्रश्न क्या है, वो भगवान, अर्जुन का प्रश्न है कि इतना संसार में दुख है, ये है, वो है, फिर भी ये लोग किस प्रकार से भगवान के विषय में बोल सकते हैं? इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि वो भगवान से आसक्त होते हैं, संसार से आसक्त। बात आसक्ति की हो रही है, इसको ध्यान रखें, नहीं तो आप सब ये समझेंगे कि प्रभु जी हमको क्या संन्यास लेने की आइडिया दे रहे। आसक्ति अर्थात पूरी तरह से उसी चीज की कमी को महसूस करते रहना और उस चीज के द्वारा नियंत्रित होना, उस चीज को नियंत्रित नहीं करना बल्कि उसके द्वारा नियंत्रित होना। जैसे उदाहरण है चाय। मान लो कोई व्यक्ति को सुबह सुबह 1 कप चाय नहीं दिया, मान लो आप ये मुंबई शहर के मेयर है, हेड सब मुख्य है, और 1 कप चाय सुबह उठ के नहीं दिया तो क्या होगा? सर दर्द होगा, मन नहीं लगेगा।
इतना बड़ा व्यक्ति जो पूरे मुंबई के व्यवस्थापन मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज करता है, परंतु उसको एक कप चाय का पानी यदि नहीं मिला
तो पर्सनालिटी डिसऑर्डर,
हैरान परेशान हो जाएगा। हाँ, इसको आसक्ति कहते हैं। उस वो चीज हमको यदि नहीं मिली तो झटपट 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 हो जाता है, जैसे नाक और मुख बंद करके दबा दिया हो तो आदमी कैसा करेगा, तड़पेगा, वो तड़प रहती है, तड़पता रहता है इंसान उसके लिए, उसको आसक्ति है, वो आसक्त है। तो यह लोग जो होते हैं भक्त लोग, जो कृष्ण भावना भावित होते हैं, वो सांसारिक बातों के प्रति आसक्त नहीं होते, भगवान की ओर, भक्तों की ओर, शुद्ध भक्तों की ओर आसक्त होते हैं। इसलिए उनके वाणी में भगवान ही भगवान रहते हैं। कैसे का उत्तर है ये। इसलिए दूसरी बात इस श्लोक में क्या बताई है, हाँ, शुभ जो है वाणी से शुभ घटना का अभिनंदन नहीं होता है। कोई शुभ घटना हुई है तो बहुत उत्तेजित, हाँ हाँ, एकदम भयंकर एक्साइटमेंट, हाँ, बहुत ही उत्तेजित, क्या है, इंडिया की टीम ने वर्ल्ड कप जीता, पूरी रात भर पूरे मुंबई शहर में दंगे किए लोगों ने, हाँ, शुभ हुआ शुभ हुआ शुभ हुआ, और अब क्या हुआ, सारे के सारे गैम्बलिंग में फंस गए। अब क्या करेंगे, शुभ का इतना अभिनंदन किया, अब क्या करोगे, जो किया उस पे पछताओ है कि नहीं। तो वो इस प्रकार से अभिनंदन अर्थात अभिनंदन नहीं बल्कि उन बातों का त्याग करते हैं, इसलिए उनके उपदेश भी उसी प्रकार के रहते हैं, इसलिए उनके वाणी में भी वही बात रहती है। कौन सी बात रहती है, त्याग की, अभिनंदन की बात नहीं रहती, त्याग की बात रहती है। वो समझते, वो प्रभावित, वो उस घटना का विरोध भी नहीं करते हैं और अति उत्साहित भी नहीं होते हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं पता नहीं कल क्या होगा इन लोगों का। है कि नहीं, किसी के मन की कोई गारंटी नहीं है। और तीसरी बात इस श्लोक में बताई है, द्वेष पूर्ण वाणी से नहीं बोलते, किसी का द्वेष ही नहीं करते हैं, क्योंकि मान लो उनके जीवन में अशुभ घटना हो भी गई, जैसे कौन, बलि महाराज, प्रभुपाद जी, उनके भी जीवन में बहुत कुछ हुआ, बलि महाराज, परीक्षित महाराज, पृथु महाराज, शास्त्र देखिए पूरा भागवत, अशुभ घटना भी हुई तो ये द्वेष नहीं करते, क्योंकि वो क्या जानते हैं, ये जो भी कुछ हो रहा है भगवान कृष्ण का इसको सैंक्शन है, बिना भगवान के सैंक्शन से पत्ता भी नहीं हिल सकता, सारी बातों को भगवान का सैंक्शन है, भगवान कृष्ण की कृपा के रूप में वो सारी बातों का स्वीकार करते हैं, इसलिए उनके वाणी में द्वेष नहीं होता है। ये तीन बातें मुख्य है, जिस व्यक्ति की वाणी में यह तीन बातें होती है, तीन प्रकार का विशेष स्नेह होता है, ये विशेष स्नेह है, ये विशेषताएं है, उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर रह सकती है, वो स्थित प्रत्न रहता है, ये स्थित प्रत्न के लक्षण है, वो क्या बोलता है और कैसे बोलता है, तो वो ऐसे इसलिए बोलता है, भगवान के विषय में ऐसे इसलिए बोलता है, क्योंकि वो ये सब जानता है और फिर मानता भी है। केवल जानने से काम नहीं चलेगा, हमारा कंप्यूटर तो हमसे भी ज्यादा जानता है, नहीं? आपके घर में कंप्यूटर है, सभी के घर में 200-500 जीबी का कंप्यूटर, 1000 जीबी का कंप्यूटर है, कितना जानता है आपसे, हम सब जितने भी यहाँ बैठे हम सब जितना जानते हैं, या हजारों लोग जितना जानते हैं, उतना सब कुछ एक कंप्यूटर जानता है, मशीन निर्जीव, इतना जानता है। तो वो कंप्यूटर के जानने में और हमारे जानने में क्या अंतर है, जानकर यदि हम नहीं मानते हैं, जानने के बाद यदि हम उसको मानने नहीं लगते हैं, तो हम पत्थर है, पत्थर। प्रभुपाद तो कहते हैं कि ये डेड बॉडी है, डेड बॉडी, मूविंग डेड बॉडी, चलती फिरती बस, चलती फिरती लाश, जानकर नहीं मानते हैं।
वेरी बैड। परंतु जो भक्त होते हैं, स्थित प्रज्ञ होते हैं, भगवान उनकी व्याख्या कर रहे हैं, वो जानते भी है और मानते भी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम भी जानकर मानने का प्रयास करेंगे, जानकर चुपचाप नहीं बैठेंगे। हाँ, करेंगे नक्की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है? एक प्रश्न पूछ सकते हैं। निर्जला एकादशी अर्थात निर्जल, बिना जल के एकादशी व्रत का पालन करो। अकेले घर पे बैठ के करने का प्रयास करोगे तो माया आपके ऊपर अटैक करेगी। आपको हमने लास्ट पिछले शुक्रवार को बताया था, किसकी कथा बताई थी? एक जंगली गाय बताई थी, याद है? स्मरण है? बताओ कि भूख लग गई। जंगली गाय कभी भी जाती है जंगल में, घूमती है ना, तो एक साथ चलती है, पूरे ग्रुप में चलती है ना, ग्रुप में जंगल में घूमती है। परंतु एकाध बार एक जंगल की जंगली गाय सोची कि अभी मैं ठीक है, थोड़ा इधर उधर भटक के आती हूँ, इनको जाने दो। जब वो एक जंगली गाय जंगल में भटकने के चक्कर में इधर उधर जाती है, तुरंत उसके ऊपर शेर हमला करता है। और जब उसके ऊपर शेर हमला करता है तो अकेली जंगली गाय कुछ नहीं कर सकती, शेर उसको खा जाता है। लेकिन वही जंगली गाय 25 जंगली गायों के ग्रुप में रहती है और फिर शेर यदि दिखता है सामने, तो जैसे ही 25 जंगली गायों को शेर देखता है तुरंत भाग जाता है। तो निर्जल एकादशी के दिन घर पे बैठ के यदि अकेले बिना जल पिए, बिना पानी पिए करने का प्रयास करोगे तो माया बहुत सताएगी आपको। इसलिए उस दिन पूरे दिन भर मंदिर में प्रोग्राम है, स्नान यात्रा है। उस दिन भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन है और फिर स्नान के लिए भगवान चले जाएंगे। फिर 15 दिन दर्शन नहीं होगा। हाँ, 15 दिन दर्शन नहीं होगा, फिर रथ यात्रा के दिन दर्शन होगा। कितना? 10 जुलाई के दिन भगवान का दर्शन होगा। तो ये इस आध्यात्मिक तिथि का पूरा लाभ मुझे उठाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।